वैष्णव भजन है, वैष्णव भजन लाया है सब लोग, एक भजन गाते हैं, चलो उसके बाद शुरू करते हैं, 15 मिनट तक करेंगे। मैं खोलिए जो है नीलो पे प्रेम धन करके है ना भजन, वो खोलिए, इंडेक्स खोलिए फटक से। बोलिए तो कल दो भक्तों का तिरुभाव तिथि था जो कि चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षदों में से है, एक है रूप गोस्वामी पाद और दूसरे थे गौरीदास पंडित, चैतन्य महाप्रभु के गौरीदास पंडित, तो उनका कल तिरुभाव तिथि था, तो कल हमारा काउंसलिंग था, इसलिए मैं सोचा था कि उन्हीं भक्तों के बारे में, रूप गोस्वामी के बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारे पास टाइम्स है, हम उनका एक अलग से हम कहीं करेंगे, लेकिन गौरीदास पंडित के विषय में आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम भजन गाएंगे, है ना, खोले सब लोग भजन,
जय नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हमारा स्वरूप पा दास रघुनाथ पतित पावा भट युग एक काले कोठा गेला गोरा नटराज, आषाढ़े मोति माता अनले पासिबो, गौरांग गोने रानी दे को गेले पाबो, संगे जो कोई मिला संगना भैया करे नर समाधानीलो प्रेमा धन करुणा प्रचो हेना प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर
अनुवाद रहेगा उसमें ना, पढ़िए जोर से अनुवाद पढ़िए
पूरा कंटिन्यू। अहो जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे आचार्य ठाकुर श्रीनिवास आचार्य कहाँ चले गए? मेरे श्री स्वरूप दामोदर श्री रूप सनातन तथा पतितों को पावन करने वाले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ है? मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्ण दास कविराज गोस्वामी तथा महान नर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब एक साथ कहाँ चले गए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सब का व्यूह में कैसे सम मैं अपना सिर पत्थर से पटक दूंगा या आग में प्रवेश कर जाऊंगा। गुरुओं के भंडार श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? इन सब संगियों के साथ गौरांग महाप्रभु ने बोला है कि उनका संग न पाकर नरोत्तम दास केवल विलाप कर रहे।
तो कल चैतन्य महाप्रभु के जो दो पार्षद श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद और गौरीदास पंडित, जिनका तिरुभाव तिथि था, तो विशेष करके इन जो वैष्णवों का चरित्र है और उसमें भी विशेषतम जो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त है, जिन उनके पार्षद है, उन भक्तों का जब हम चरित्र को जब सुनते हैं ना, तो हमारा जो भक्ति में हमको पोषणता प्राप्त होता है ना, हमारे जो भक्ति में रुचि है ना, उत्साह जो है ना, और बढ़ जाता है। इसलिए हमको चैतन्य महाप्रभु के जो इन पार्षद है, विशेष करके जो कि नित्य सिद्ध है, चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद है ना, वो नित्य सिद्ध है। हमारी स्थिति क्या है, हम नित्य बद्ध जीवात्मा है, इसलिए हमको इन पार्षदों और इन भक्तों का जब चरित्र को जब सुनते है ना, तो हमको जिस प्रकार से अगर हमारा शरीर वीक हो जाता है ना, कोई बीमारी आ जाता है या वीकनेस लगने लगता है, तो हम किसी न किसी टेबलेट को खाते हैं हम, तो क्या होता है, हमको फिर से एनर्जी आ जाता है हमारे शरीर में। ऐसे ही भक्ति मार्ग में जब भी उत्साह की कमी लगने लगता है, हम जब बोलते हैं कि जप में रुचि नहीं हो रहा है ना, कथा में रुचि नहीं हो रहा है ना, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, आध्यात्मिक ग्रंथों को जब खोलते हैं तो नींद आ जाता है ना, मन नहीं लग रहा है, जब कथा को सुनते हैं तो मन को इधर उधर कहीं भागने लगता है, ये हर भक्तों का प्रैक्टिकल प्रभाव, सबकी स्थिति है ऐसा। इस प्रकार का उतार चढ़ाव जो है ना, आते रहता है जीवन में। तो ऐसी परिस्थितियों में इन इन भक्तों का जब आश्रय, इनके लीला और उनके गुणों का और विशेष करके इनकी जीवनी के विषय में अगर हम जब सुनते हैं ना, तो हमको एक उत्साह भी प्राप्त होता है, साथ साथ में सेवा भी मन लगता है और उसके बाद पढ़ाई में भी रुचि आ जाता है। जितने भी अंग है भक्ति के वो सारी चीजें ऑटोमेटिक फिर से वो चलने लगती है। तो इसलिए हमारे जीवन में विशेष करके हम गौड़ीय भक्तों के जीवन में जो इन चैतन्य महाप्रभु के इन पार्षदों का जो पास टाइम है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंस है। हो सकता है कि हमको उनके बारे में सुनने के लिए थोड़ा से अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए अगर रुचि नहीं है तो भी जबरदस्ती अगर सुनेंगे तो निश्चित रूप से हृदय का परिवर्तन होता है ना, क्योंकि इनकी कृपा प्राप्त होती है हमको। और विशेष करके मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ कि विशेष करके जब भी इनका आविर्भाव तिरभाव रहता है ना उस दिन हमको इनके विषय में तो श्रवण करना ही करना चाहिए, क्योंकि ये वैष्णव मैं पिछली बार बताया कि जिस प्रकार से है कि अगर भक्तों के समूह में अगर हम बैठते हैं तो किस प्रकार से कृष्ण वहां पे उपस्थित रहते हैं है ना और कृपा करते हैं। ये चीज को मैंने बताया था कि हमारे बीच में कैसे कृष्ण की उपस्थिति है ना, कि नारद मुनि के भगवान बताते हैं ना कि जहां पे भी हमारे भक्त डिवोटीज बैठ के हमारे गुणों का कीर्तन करते हैं मैं उस जगह पर सदैव निवास करता हूँ। कोई कितने भी बड़े बड़े योगी हो जाए, कितने बड़े बड़े ज्ञानी हो जाए, उनके पास भगवान नहीं रहते। यहाँ तक कि भगवान बोलते हैं मैं बैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, लेकिन जहाँ पे भक्त लोग कीर्तन करते हैं हमारे उनके हमारी कथाओं को सुनते हैं वहां पे मैं सदैव उपस्थित रहता हूँ। तो इसी प्रकार से जब हम इन पार्षदों के चरित्रों का गान करते हैं ना, भले से उनका आविर्भाव हो या तिरभाव हो, क्योंकि भक्तों का कभी भी आविर्भाव और तिरभाव ये दोनों में कोई अंतर नहीं होता है एक्चुअली में। साधारणतः हम देखते हैं भौतिक संसार में कि आविर्भाव और तिरभाव, जन्म और मृत्यु, जन्म जो है वो लोग उस दिन खुशियां मनाते हैं और मृत्यु के समय सब लोग रोते शोक मनाते हैं। लेकिन जो पार्षद होते हैं भगवान के भक्त होते हैं ना उनके जन्म और कर्म, जन्म और मृत्यु, मृत्यु तो होता ही नहीं उनका, इसलिए हम उनका आविर्भाव और तिरभाव में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हम कीर्तन करते हैं समूह में बैठ के कृष्ण उपस्थित रहते हैं ना, ऐसे इन भक्तों के चरित्र को गायन करते हैं ना, क्योंकि ये भक्त भी हमको देख रहे हैं, कृपा करेंगे हमारे ऊपर अगर उनकी कृपा की याचना करते, विशेष करके इस दिन, क्योंकि जन्म के दिन लोग स्वाभाविक है कि बहुत खुशियां मनाते हैं ना, खुश रहते हैं उस दिन है ना। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं कि तिरभाव है तो उस दिन हम कृपा की याचना करेंगे तो हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ जन्म और कर्म ये दोनों अलग अलग है, मतलब आविर्भाव और तिरभाव में कोई अंतर नहीं है उनके। तो उसी प्रकार वो भी आज भी हमको आशीर्वाद दे सकते हैं हमको है ना, तो इसलिए उस दिन विशेष करके हमको उनसे कृपा याचना करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन तिरभाव, जैसे कल तिरभाव था तो उस दिन मतलब वो अपने नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। तो सब नित्य लीला में प्रविष्ट होना मतलब कितनी बड़ी खुशी वाला दिन है ना उनके लिए है ना। यहाँ तक कृपा करके भगवान ने हमारे लिए भेजा था हम लोगों के कल्याण करने के लिए, लेकिन वो अभी नित्य लीला में, क्योंकि नित्य सिद्ध थे ना तो नित्य लीला में वो प्रविष्ट हो गए। तो कितना खुशी वाला दिवस है, चाहे आविर्भाव हो चाहे तिरभाव दोनों। तो इसलिए विशेष करके उन दिनों पर हमको जब कृपा की याचना करेंगे तो निश्चित रूप से वो विटामिन की तरह हमारे है ना भक्ति मार्ग में तो हमको पोषण प्राप्त होता है, हम उत्साहित होकर कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं है ना। कभी कभी हम सेवा 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 करते रहते ना उत्साह चला जाता है। आप देखिए शुरुआत में हम कोई भी सेवा करते तो बड़े उत्साह से करते, लेकिन कंटिन्यू अगर वो रेगुलर वही सेवा रहे तो धीरे धीरे क्या होता है उन सेवाओं से रुचि खत्म होने लगता है ना। लेकिन ये रुचि कंटिन्यूसली चलते रहे लॉन्ग टाइम तक, अंतिम मृत्यु तक चलते रहे है ना, शरीर त्याग करते तक चलते रहे अगर ऐसा हम चाहते हैं तो इन वैष्णवों की कृपा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम कि इनके कृपा की याचना नहीं करेंगे ना तो निश्चित रूप से हम सेवा में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे है ना। तो इस प्रकार से हमको इनके चरित्र को निश्चित रूप से हमको श्रवण करना चाहिए। और ये गौरीदास पंडित जिनके बारे में हम थोड़ा सा आज उनके विषय में हम 15-20 मिनट तक हम जो की चर्चा करेंगे है ना। तो गौरीदास पंडित जो कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में से एक विशेष पार्षद है ना, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में से एक विशेष पार्षद ये भी थे, जैसे कि षड गोस्वामी वृंद थे है ना, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जितने भी 6 आचार्य श्री गोस्वामी है ये तो विशेष थे ही, लेकिन साथ साथ में गौरीदास पंडित भी बहुत विशेष थे चैतन्य महाप्रभु के लिए। चैतन्य महाप्रभु इनसे विशेष प्रेम करते थे। क्यों? क्योंकि ये जो है ना भगवान के कृष्ण लीला में ये सुबल सखा के रूप में थे। भगवान के पांच मुख्य सखा थे, उसमें से एक सुबल सखा थे। वो सुबल सखा जो कि चैतन्य लीला में है ना, नवदीप लीला में वो क्या बन के आए? गौरीदास पंडित बन के आए, है ना। तो सुबल ये जो सुबल सखा थे उनका क्या सेवा था कृष्ण लीला में? उनका विशेष यह सेवा था कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को मिलाना, ये उनका विशेष सेवा था। इसलिए श्रीमती राधा रानी ने इनसे बहुत खुश रहती थी। किसे? सुबल सखा से बहुत खुश रहती थी श्रीमती राधा रानी। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से हमेशा उनको मिलाने का कार्य जो सेवा जो है ये सुबल सखा का था। इसलिए श्रीमती राधा रानी उनके ऊपर विशेष कृपा था श्रीमती राधा रानी का। ऐसे ही हम भक्तों को भी अगर भक्ति मार्ग में प्रगति करना है, कृष्ण प्रेम जो हमारा जो टारगेट है जीवन का लक्ष्य जो है प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना, यह इतना आसान नहीं है, है ना। इस प्रकार से हम जानते हैं कि आदो श्रद्धा तथा साधु संगोता भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा आगे चल के प्रेमा, जो प्रेमा भक्ति है, प्रेम को जो प्राप्त करना है जो है ना, ये बहुत उच्च है। तो इस जो हमारे जीवन का जो उद्देश्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, अगर उसको हमको प्राप्त करना है तो हमको श्रीमती राधा रानी की कृपा की बहुत जरूरत है, है ना। जब तक श्रीमती राधा रानी कृपा नहीं करेगी तब तक हम उस प्रेम को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, है ना। जैसे कि अभी भक्ति मार्ग में भी हम आते हैं तो भगवान की कुछ ना कुछ सेवा प्राप्त होता है ना, तो वो श्रीमती राधा रानी की कृपा है, है ना। जब कृपा होता है तभी सेवा मिलता है, है ना। कृपा होता है, सेवा मिला कुछ ना कुछ, मतलब ये कृपा है, है ना। ऐसा सेवा नहीं मिल जाता है, राधा रानी की कृपा है, है ना। ऐसे ही कहा जाता है कि जब वृंदावन में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसके ऊपर श्रीमती राधा रानी का कृपा हो, क्योंकि वो जो क्षेत्र है श्रीमती राधा रानी का है, उनके कृपा के बिना आप अपने प्रयास से जा ही नहीं सकते, है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा बहुत प्लान हो चुका है लेकिन जिस दिन जाना उसी दिन कैंसिल हो जाता है। लेकिन कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि कुछ प्लान ही नहीं है लेकिन पता चला कि वृंदावन पहुंच गए, है ना। तो श्रीमती राधा रानी का जब तक कृपा नहीं होगा हमारे जीवन में तब तक हम जो है ब्रज धाम में एंट्री नहीं मार सकते हैं या हमको कोई सेवा प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार से इस सुबल सखा के ऊपर श्रीमती राधा रानी का बहुत विशेष, वो बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वो कृष्ण को मिलाने का कार्य करते थे, सेवा करते थे सुबल सखा। इसलिए श्रीमती राधा रानी ने एक बहुत उनको एक सुंदर एक माला प्रदान किया था उनको ऊपर कृपा करते हुए। तो यही सुबल सखा जो है चैतन्य महाप्रभु के जो नवदीप लीला में वो क्या बन के आए? गौरीदास पंडित बन के आए। गौरीदास है ना, ऐसा लगता कि पार्वती का नाम है ना, गौरी है ना, पार्वती का बोलते हैं ना गौरी लोग, लेकिन ये श्रीमती राधा रानी का भी नाम है गौरी, है ना, श्रीमती राधा रानी का नाम है। विशेष कृपा था श्रीमती राधा रानी का इनके ऊपर, इसलिए यह गौरीदास पंडित के रूप में चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए। तो और चैतन्य महाप्रभु इनसे विशेष प्रेम करते थे एक्चुअली। और इनका जो जन्म था वो बंगाल के एक गांव में हुआ था, शालिग्राम नामक गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और वो विशेष करके इनके छह ब्रदर थे, छह वाहन भक्त थे भगवान के एक्चुअली, चैतन्य महाप्रभु के विशेष भक्त थे छह भाई। लेकिन फिर भी इनको घर में रहना बहुत पसंद नहीं था, ये हमेशा एकांत में रह के कृष्ण का भजन और सेवा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वहां पे उन बाकी पांच भाइयों को प्रार्थना करके निवेदन करके वो घर छोड़ दिए थे। घर छोड़ के कहाँ पे रहते थे? गंगा के किनारे, नवदीप में आकर गंगा के किनारे किसी एकांत स्थल में बैठकर वो भजन किया करते थे। तो इस प्रकार से, और ये विशेष गौरीदास पंडित जो थे कि चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय थे, है ना। नवदीप में वो कहाँ पे, अंबिका कालना करके गांव है वहां पे वो रहते थे। अंबिका मतलब एक देवी का नाम है, उस नाम से पूरा गांव जो कि शांतिपुर के निकट है, शांतिपुर अंबिका कालना को गए ना। तो वहां पे ये गौरीदास पंडित रहते थे। और चैतन्य महाप्रभु का भी बहुत विशेष कृपा उनके ऊपर था, इसलिए कि चैतन्य महाप्रभु ने जब ये संन्यास लेने का जब सोचा कि अभी मुझे निकल के संन्यास लेना चाहिए, है ना, लोगों का उद्धार करना चाहिए, क्योंकि जब तक संन्यास को ग्रहण नहीं करूंगा मैं तब तक मैं प्रचार करूंगा तो लोग इतना सुनेंगे नहीं, इसलिए वो संन्यास को धारण करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास कर लेने का विचार किए, मतलब घर छोड़ने का विचार किए, परिवार छोड़ने का विचार किए और सन्यास लेके अभी मैं निकल पड़ूंगा, ऐसा जब विचार किए तब चैतन्य महाप्रभु ने गौरीदास पंडित से मिलने की इच्छा व्यक्त किया। चैतन्य महाप्रभु किसी को बताना नहीं चाहते थे कि सन्यास लेना चाहते हो, है ना, घर छोड़ के जाना चाहते अभी, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु के कुछ विशेष पार्षद थे जिनको चैतन्य महाप्रभु बोल के जाना चाहते थे, है ना। कभी कभी हम भी देखते हैं कि मान लीजिए कभी कभी हम कुछ कलह हो गया या आपस में, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हमसे बिना बताए हम जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कोई ना कोई एक व्यक्ति को तो बता के ही जाता है जो उनके खास रहते हैं कि आप किसी को बोल, आप हमारे खास है इसलिए मैं आपको बोल के जा रहा हूँ, ऐसा है ना। हमारे जीवन में भी होता है ना, कोई ना कोई एक खास व्यक्ति को बोल के ही जाते हैं ऐसा। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ही विचार किया कि मुझे संन्यास लेना, अभी मैं घर त्याग करके जाऊंगा, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने गौरीदास पंडित से मिलने के लिए आए, नित्यानंद प्रभु को साथ में लेके गौरीदास पंडित को मिलने आए कि अभी मिलके उन्होंने बताया कि हे गौरीदास पंडित, अभी मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, अभी मैं घर को छोड़ के कल चला जाऊंगा, है ना। घर पे उन्होंने किसी को नहीं बताया चैतन्य महाप्रभु ने, लेकिन गौरीदास पंडित को विशेष करके चैतन्य महाप्रभु वहां पे जाकर गंगा को पार करके रात्रि के समय में चैतन्य महाप्रभु जाकर गौरीदास पंडित को बताए थे, और गंगा को पार किसी एक लकड़े के ऊपर बैठकर चैतन्य महाप्रभु ने पार किया था, और एक चप्पू से चला चला के वो गंगा को पार किए थे चैतन्य महाप्रभु पार के, वो चप्पू जो है ना वो उनको गौरीदास पंडित को दे दिए थे, कृपावश चैतन्य महाप्रभु उनके पास दे दिए थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जब ही गौरीदास पंडित को बोला कि मैं सब संन्यास लेने जा रहा हूं, तो गौरीदास पंडित को बिल्कुल सहन नहीं हुआ, क्योंकि जो भक्त होते हैं भगवान के वो चैतन्य महाप्रभु को कभी भी संन्यास के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, है ना। मैंने पिछले कई किसी प्रवचन में बताया था मैंने इस बात को कि किस प्रकार से हमारे इस्कॉन में भी चैतन्य महाप्रभु के संन्यास का सेवा पूजा नहीं होता, संन्यास रूप का, है ना। क्या करते हैं, बहुत सुंदर सजाते हैं चैतन्य महाप्रभु को। तो जैसे ही गौरीदास पंडित ने यह सुना कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने जा रहे हैं, तो रोने लगे, है ना, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े हो और गिर कर बोले कि प्रभु नहीं, आप हमें छोड़कर मत जाइए, इस प्रकार के गिड़गिड़ाने लगे, है ना, गौरीदास पंडित कि आप छोड़ के मत जाइए। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको उठा के गले लगाया, बोले कि नहीं, अभी मुझे अभी समय आ चुका है कि मैं जीव बाकी सब जीवों का उद्धार करने का समय आ चुका है, तो इसलिए जब तक मैं संन्यास नहीं लूंगा तो ये संसार के लोग कभी भी मान देंगे नहीं, हमारा सुनेंगे नहीं, और नहीं सुनेंगे वो अपराध करेंगे, उनके कभी भी भक्ति भक्ति में आएंगे नहीं, कभी सेवा करेंगे ही नहीं, इसलिए मुझे संन्यास, क्योंकि एक सन्यासी के प्रति लोगों का स्वाभाविक झुकाव होता है, चाहे कितना भी कर्मी कितना भी पापी से पापी व्यक्ति हो, लेकिन सामने से कोई सन्यासी जा रहा है तो निश्चित रूप से उसके झुक जाता है, उसका चरण मस्तक झुक जाता है। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए गौरीदास पंडित को बोलते हैं कि अभी समय आ चुका है, मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, आप मेरे प्रिय थे इसलिए मैंने आपको बताकर जाना उचित समझा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने वहां पे उनको वो चप्पू जो था जिससे पार करके गंगा आए थे वो उनको प्रदान किया, और साथ साथ में चैतन्य महाप्रभु ने उनको भगवद गीता भी दिया, आप भगवद गीता का पाठ करो, उनको अपने हाथों से भगवद गीता गिफ्ट के रूप में दिया चैतन्य महाप्रभु ने। और चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोल के चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ निकल पड़े। तुरंत ही गौरीदास पंडित ने उनके चरणों को पकड़ लिया और रोने लगे, प्रभु आप मत जाइए, आप जाएंगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, या तो मेरे प्राण ही अभी छूट जाए उसके बाद ही आप जाइए, आप ऐसा हमको छोड़कर नहीं जा सकते, इस प्रकार से रोने लगे गौरीदास पंडित चैतन्य महाप्रभु के विरह में, और रोने लगे और छोड़ ही नहीं रहे उनके चरणों को कि आप प्रभु आप कृपा करिए हमारे ऊपर, मत जाइए। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके वहां पे गौरीदास पंडित को गौर निताय के विग्रह प्रदान किए, है ना, तुरंत ही उन्होंने 7 फीट के विग्रह दिया गौर निताय का, स्वयं अपने ही स्वरूप का विग्रह प्रकट किए और गौरीदास पंडित को दिए। तो अभी गौरीदास पंडित को दिए तो विग्रह को अभी क्या 2 थे, अभी 4 हो गए, है ना, 2 थे 4 हो गए। तो तुरंत ही गौरीदास पंडित को, प्रभु आप बैठिए मैं आपको कुछ, क्योंकि गौरीदास पंडित जो थे ना वो विशेष करके चैतन्य महाप्रभु को ना बहुत सारे व्यंजन बना के खिलाया करते थे, उनका रुचि बनाने में बहुत, भोग को बनाकर भगवान को बहुत सारे व्यंजन को चढ़ाने में बहुत रुचि था उनका, हालांकि वो एज हो चुका था उनका, जब ही चैतन्य महाप्रभु ने उनके पास जब आए ना तो काफी एज हो चुका था उनका, है ना, लगभग 60 साल के हो चुके थे वो। लेकिन वो बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु जाने लगे तो वो बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और उनको बैठा दिए और तुरंत ही उन चारों लोग को, अभी दो विग्रह के रूप में और दो सामने, है ना, तो उनको बैठा के तुरंत ही उन्होंने बहुत सारे व्यंजनों को बनाया और वहां पे उनको खिलाया। और जैसे ही भोग को ग्रहण किए गौर निताई, है ना, चैतन्य महाप्रभु निताई उनको तुरंत ही फिर क्या खिलाए, उठ के फिर से निकलने लगे, बोले प्रभु प्रभु अभी आप नहीं, मत जाइए करके फिर से रोने लगे, मेरे प्राणों को आप हर लीजिए उसके बाद यहाँ से जाइए, इस प्रकार के जिद करके बैठ गए थे गौरीदास पंडित। तो उस समय कृपा उन्होंने बोला कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि हे गौरीदास पंडित, इस विग्रह में और हमारे में कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैंने तुमको विग्रह प्रदान किया, है ना, साक्षात ये विग्रह जो है कौन है, साक्षात मैं ही हूँ, इसलिए तुम ये चिंता मत करो कि मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये प्रमाणित होता है कि जब भी हम परंपरागत हम गौर निताई के विग्रहों की जब स्थापना कर लेते हैं तो वो गौर निताई वहां पे सदैव उपस्थित रहते हैं, क्योंकि विग्रह के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने स्वरूप को गौरीदास पंडित को दिया था। तो गौरीदास पंडित ने बोला कि हाँ प्रभु, मैं समझ गया कि आप साक्षात ये विग्रह आप ही है, तो एक काम करिए कि आप दोनों लोग इधर आइए और विग्रह को जान लीजिए। तो प्रभु बोले कि ठीक है, तो तुरंत विग्रह के पास ये दोनों लोग खड़े हो गए और विग्रह निकल पड़े। अभी ये लोग विग्रह के रूप में हो गए और विग्रह निकल पड़े। तो फिर से गौरीदास पंडित प्रभु प्रभु फिर कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, फिर से रोने लगे, फिर से उनके चरणों को पकड़ लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अभी तुमने तो बोला ना कि हम मेरे को रुक जाने के लिए, तो हमने रुक गए वहां पे जाके, और अभी उनको जाने दो। तो गौरीदास मैंने प्रभु प्रभु आप रुकिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोला पहले डिसाइड करो, इन दोनों को चाहिए कि हमको चाहिए, हम दोनों को चाहिए, दोनों में से डिसाइड करो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर विशेष कृपा किया गौरीदास पंडित को, है ना। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु से वहां से निकले, उनको समझा बुझा के, और फिर उन विग्रहों की सेवा पूजा जो है गौरीदास पंडित बहुत प्रेम से किया करते थे, हालांकि वो पहले भी करते थे बहुत प्रेम से, क्योंकि उनको व्यंजन बना के भगवान के चढ़ाने के लिए बहुत रुचि था, बहुत प्रकार के व्यंजन बनाते थे वो, है चैतन्य चैतामृत में बहुत सारे व्यंजनों का भी वर्णन है। एक्चुअली वैरायटीज ऑफ व्यंजन जानना है तो चैतन्य चैतामृत को पढ़िए, बहुत सारे किस प्रकार से भगवान को भोग लगाते थे ये आचार्य और ये सारे जो भक्त थे। तो इस प्रकार से वो सेवा पूजा वहां पे करने लगे, फिर भी मन के अंदर एक था कि चैतन्य महाप्रभु चले गए हमको छोड़ के। लेकिन डेली वो जब व्यंजनों को भोग लगाते थे ना, उस समय डेली वो विग्रह बात करके खाया करते थे उनसे, डेली बात करके वो वहां पे उनके सामने ही खाया करते थे, और विग्रह इनके टेंशन को देख के विग्रह हमेशा मुस्कुराते थे और हंसते थे। एक दिन की घटना है कि वो व्यंजनों को भोग लगाए और भोग लगा के जब ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप खाइए, लेकिन मन के अंदर उनके दुख तो था कि चैतन्य महाप्रभु गए यहाँ से, हालांकि वो जानते थे कि विग्रह और उनमें कोई अंतर नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी उपस्थिति वहां से यहाँ से निकल चुके हैं चैतन्य महाप्रभु। लेकिन गौर निताई और इनके इस विचार धारणा को जब सोचते थे ऐसा ना, तो बहुत मुस्कुराते थे, हंसते थे। हंसकर एक दिन की घटना है कि उनको दोनों हंसने लगे, भोग लगाते समय ये चिंतन था तो हंसने लगे, दोनों विग्रह हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। तो गौरीदास पंडित बोले क्या हो गया, तो बोले कि अरे तुम भूल चुके हो, क्यों भूल रहे हो कि तुम सुबल सका हो। तुरंत ही उन दोनों विग्रह उनके जो कृष्ण के पास टाइम में जो उनका रूप था, तुरंत ही उनको स्मरण दिलाया, अरे तुम सुबल सका हो, तुम क्यों भूल रहे हो कि तुम सुबल सका। तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु वहां पे कृष्ण बलराम के रूप में आए और वो अपने उनके स्वरूप को याद दिलाया, और वो जो कृष्ण के जो पास टाइम है ना, उसमें जाकर उन लोगों ने उन पास टाइम को स्मरण करने लगे, किस प्रकार से वो खेला कूदा करते थे हाँ उन मित्रों के साथ। तो ये सुबल सका। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने ये गौरीदास पंडित के विषय को बहुत प्रेम करते थे, एक्चुअली गौरीदास पंडित को, इसलिए उन्होंने उनको कृपा के रूप में अपने स्वयं से अपने उनके हाथों से विग्रह को प्रदान किया गौरीदास पंडित को, और उन विग्रहों को सेवा पूजा करने के लिए वो बहुत डेली बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान को बनाकर उनको खिलाते थे। एक दिन की घटना है कि वह बहुत सारे व्यंजनों को बहुत मेहनत करके बनाए, विशेष करके मैंने इस बात को पहले ही बताया था कि जो जो उच्च कोटि के वैष्णव होते हैं, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं ना, वो इन विग्रहों से बातचीत करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि चेतन महाप्रभु 400-500 साल पहले थे तब की ये घटना है। आज भी ऐसे बहुत सारे महात्मा हैं, गुरु महाराज हैं, जो कि विग्रहों से बातचीत करते हैं। उनको देखिए विग्रहों के प्रति कितना प्रेम है उनका। देखिए अपने ही गुरु महाराज के देखिए कि उनके पास इतने सारे विग्रह है, कितना हम कभी कभी ट्रेवलिंग में जाते तो हम क्या करते हैं, विग्रह को अपने घर के बाजू में पार्टनर को दे देता कि मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, आप थोड़ा से 10 दिन, आप 10 दिन थोड़ा सा हमारे लड्डू गोपाल को देख लीजिए, हमारे गौर निताई को देख लीजिए, हम लोग 10 दिन नहीं है, है ना। लेकिन गुरु महाराज के पास कितने विग्रह बताए, गौर निताई है, नरसिंह देव के विग्रह है, और प्रभुपाद जी के विग्रह है, और बहुत सारे शालिग्राम है, है ना, बहुत सारे शालिग्राम है, है ना, छोटे छोटे एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे शालिग्राम है। महाराज ने उस बॉक्स का नाम रखा है हरिनगर, मतलब बहुत सारे हरि इसके अंदर विराजमान है। तो इतने सारे विग्रहों को लेकर गुरु महाराज क्या करते हैं, जहां पे भी जाते हैं ट्रेवल करते हैं। देखिए मतलब कितना प्रेम है उनका इन विग्रहों के प्रति। हम केवल एक विग्रह को लेकर नहीं जाते हैं ट्रेवलिंग में, है ना, क्योंकि हम 10 दिन घूमने जा रहे हैं, 5 दिन घूमने जा रहे हैं, तो उसमें डिस्टर्ब करेंगे, है ना। लेके जा सकते हैं, क्यों नहीं लेके जा सकते हैं, हमको लेके जाना चाहिए, हमको उनको उस प्रकार से सुविधा रखना चाहिए कि ट्रेवलिंग के लिए तो उस प्रकार से व्यवस्थाएं रखना चाहिए, है ना। बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं जो उस प्रकार से करके हमको उनको लेके जाना चाहिए साथ में। अरे रोज तो हम खाएंगे कि नहीं खाएंगे, हम किधर भी रहेंगे तो खाएंगे ना रोज, तो जब हम खाएंगे तो उनको भोग लगा के खाना, बस यही तो करना है, और क्या करना है ना। हमने यही बताया ना, कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाना है, केंद्र बिंदु बनाना मतलब उनको हमेशा साथ में रखे बनाना ना, कि 10 दिन बाहर जा रहे हैं तो हम उनको साथ में ही नहीं लेके जाए, मतलब हम फिर 10 दिन बिना भोग किधर भी खाते हैं। उस केंद्र बिंदु वो रहेंगे तो निश्चित रूप से हमको ध्यान रहेगा कि भाई उनकी थोड़ा हमको 10 मिनट सेवा करना है, उनको भोग लगाना है, हमारे नियमों का भी पालन अच्छे से होगा। इसलिए हमको विग्रहों को किसी और को न देके हमको लेके जाना चाहिए, उस प्रकार की सुविधा उनको प्रदान करना, उस प्रकार का रखना चाहिए, उनको लेके साथ में जा सकते हैं ना। तो इस प्रकार से जो एक शुद्ध भक्त होते हैं उनको इन विग्रहों के प्रति बहुत प्रेम होता है ना। इसलिए गुरु महाराज कभी भी ना, आप देखेंगे किधर भी रहेंगे ना, वो कभी भी मंगल आरती नहीं छोड़ते हैं। मैं जानता हूं अभी आएगा महाराज की व्यास पूजा आ रहा है, तो मैं इसके बारे में, महाराज के बारे में भी चर्चा करेंगे कि जब भी मैं महाराज के बहुत बार जब भी सेवा वगैरह करता था, पहले बहुत किया हूं मैंने, तो मैं रात को 12-12, 1-1 बजे तक मैं तो महाराज के सेवा में रहता था। वो रात को सोते हैं 1 बजे, लेकिन उठते कितने बजे, 3 बजे। उठने का टाइम फिक्स है, सोने का टाइम फिक्स नहीं है। लोग 10 बजे तक तो मिलते हैं, पहले 10 बजे के बाद का शेड्यूल महाराज के है कि उनकी प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ते हैं, नरसिंह के स्तुतियों को गायन करते हैं 10 से लेके 12:30 बजे, ये 2.5 घंटा का जो शेड्यूल है महाराज का ना, वो बुक्स को पढ़ते हैं प्रभुपाद जी। बिना प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़े वो सोते ही नहीं है, रेस्ट बेड पे जाते ही नहीं है, तो उन ग्रंथों को पढ़ते हैं और उसके बाद नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं, नरसिंह भगवान की स्तुतियों को पढ़ते हैं, और स्तुतियों को पढ़ने के बाद ही वो लेटते हैं। तो 1 बजे सोते हैं, लेकिन फिर भी 3 बजे किधर भी। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे आज भारत में तो कहीं विदेश गए, मान लीजिए अमेरिका गए, तो वहां पे यहाँ पे रात को निकले, लेकिन वहां पे सुबह है, अंतर होता है ना, दिन रात पूरा 12 घंटे का अंतर होता है, लेकिन उस शेड्यूल में भी महाराज जाके वहां पे उस प्रकार का करते हैं। ऐसा तो रोज का है, रोज का ट्रेवलिंग है, ऐसा नहीं कि हम तो कभी साल में एक बार जाते हैं, 10 दिन के लिए जाते हैं। हम 10 दिन के लिए जाते हैं तो हमको कितना प्रेम है देखिए उस समय पता चलता है। 10 साल में एक ही बार जाते हैं, उसके बाद भी विग्रहों को छोड़ के जाते हैं हम, है ना, किसी न किसी को दे के जाते हैं, मतलब हमारा उनसे इतना प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं हुआ है, लगाव नहीं हुआ है, हमारे परिवार का एक अंग है वो करके हमने आज तक समझा नहीं, है ना। मान लीजिए आपके घर में 2 पुत्र हैं, 2 बच्चे हैं, तो आप एक बच्चे को छोड़ के जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे इतना लगाव है, नहीं छोड़ के जा सकते उससे। तो इन विग्रहों का को प्रेम हमको ऐसे ही करना है, ऐसा जब उस प्रकार का जब प्रेम रहेगा ना, तब निश्चित रूप से उस विग्रह के साथ आदान प्रदान वो करेंगे हमारे साथ। अगर वो प्रेम ही नहीं है तो फिर कहां से आदान प्रदान होगा। तो इस प्रकार का हम देख सकते हैं कि जो शुद्ध वैष्णव होते हैं ना, उनसे पता चलता है कि वो किस प्रकार से विग्रहों से आदान प्रदान करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, है ना, तो विग्रह पास में रहते हैं, कोई आता है महाराज को बहुत आशीर्वाद माता है ये करता है तो तुरंत महाराज बोलते हैं कि वो कृपा करेंगे, वो कृपा करेंगे, उधर आप जाइए करेंगे, उधर ही बोलते हैं महाराज कृपा करेंगे, आप चिंता मत करिए इस प्रकार से। तो एक शुद्ध भक्त जो होते हैं वो इन विग्रहों से बातचीत करते हैं। जैसे जीव गोस्वामी पाद राधा दामोदर की जब सेवा में थे जीव गोस्वामी पाद, तो अभी राधा दामोदर जो है वो जयपुर में है, उन विग्रहों की सेवा पूजा करते थे और साथ साथ में ये लोग बहुत बड़े बैरागी भी थे ना, विग्रह ये विग्रह नहीं रखे थे, विग्रह इनके पास आके रहते थे है ना, इनके पास रहते थे, इतने बड़े भक्त थे कि विग्रह इनके पास आके रहते थे। हालांकि ये लोग बड़े बड़े बैरागी थे, उनको सामने से बोलते थे कि मैं आपको भोग नहीं लगा पाऊंगा, मैं खिला नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा खुद का ठिकाना नहीं है, इतने भजन करते थे उनको, बैरागी लोग थे। तो जीव गोस्वामी पाद विग्रह राधा दामोदर का जो विग्रह थे वो स्थापित किए थे, लेकिन अपने भजन में इतना मग्न रहते थे ना कि वो विग्रह राधा दामोदर दामोदर जी जाग के किसी से मैसेज दिलाता तो बोलो मुझे भूख लगा है कुछ खिलाने के लिए बोलो, ऐसा मैसेज दिलाते थे है ना। कभी कभी है ना लेट होता है तो घर के जो पुत्र है बालक है वो उसको भूख लगता है तो फिर वो बोलता चिल्लाता है कि मुझे भूख लगा है खिलाओ 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 मुझे दो खाने के लिए दो खाने के लिए दो है ना, इस प्रकार का होता है ना। तो ऐसे ही विग्रह आदान प्रदान करते हैं है ना, कि जीव गोस्वामी पाद के पास गए विग्रह उनके पास मैसेज दिए कि मुझे भूख लगा उसको बताओ कि भूख लगा है हमको और कुछ खिलाने के लिए बोलो, इस प्रकार का मैसेज देते हैं। तो एक जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा इन विग्रहों के साथ आदान प्रदान करते हैं, उनका इन विग्रहों के प्रति इतना आसक्ति होता है इतना प्रेम होता है कि उन विग्रहों को वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो इसी प्रकार गौरीदास पंडित जो थे वो गौर निताई की सेवा इतना प्रेम से करते थे कि एक दिन की घटना है कि वो बहुत प्रेम से बहुत सारे व्यंजनों को उन्होंने बनाया है ना बहुत रोज। हालांकि गौर निताई ये चाहते थे कि इतना मेहनत क्यों करते हो है ना, इतने सारे व्यंजनों को बनाने की जरूरत नहीं, रोज कभी कभी उत्सव है फेस्टिवल है तो बना दिया करो, इतना बनाने की जरूरत नहीं ना। लेकिन फिर भी इतना उनका प्रेम था ना कि रोज व्यंजन बहुत सारे व्यंजन बना के खिलाते थे। तो अगर मान लीजिए घर के अंदर हमको ऐसा बोल दिया जाए कि आज केवल रोटी बनाओ तो है ना केवल रोटी ही बनेगा केवल रोटी ही बनेगा एक ही चीज बनेगा, ऐसा नहीं कि चार आइटम प्रेम से बनाए और खिलाए ना मौका मिल जाए, केवल बोलने की देर है आप बोल दो बस, इच्छा व्यक्त करे कि आज थोड़ा खाने का मन नहीं है ऐसा तो बस आज उपवास। तो गौरीदास पंडित उनका इतना प्रेम था ना कि वो विग्रह ना वो व्यंजन खा के परेशान थे। तो एक दिन क्या हुआ कि बहुत सारे व्यंजन को बनाया, कोई उत्सव फेस्टिवल था रहा होगा तो उन्होंने बहुत सारे व्यंजनों को बनाया। उस दिन गौर निताई ना तो मुस्कुरा रहे ना तो कुछ भी कर रहे, एकदम शांत दोनों शांत खड़े हैं हाथ ऊपर करके, बिल्कुल आदान प्रदान नहीं है ना। उन्होंने बहुत सारे व्यंजनों को बना के लाके भोग लगाया, भोग लाया तो कोई आदान प्रदान ही नहीं। तो गौरीदास पंडित तो बहुत दुख लगने लगा, मतलब आज आपको नहीं खाना है कन्फर्म हो गया उनको कि क्योंकि रोज का आदान प्रदान जिस प्रकार से वो खिलाते थे तो आज इस प्रकार का कुछ हो नहीं रहा, आप ना तो हंस रहे हो मुस्कुरा रहे हो ना तो कुछ बात कर रहे हो, मतलब आज आपको नहीं खाना है। तो जब आपको उपवास रहना ही था तो मेरे को इतना मेहनत क्यों करा, पहले ही बता दिया होता। तो इस प्रकार से वो बोलने लगे बार बार कि आपको खाना ही पड़ेगा, आप इतना मुझे मेहनत करवाए, आप बोल दिए होते पहले से तो मैं शांति से अपना जप करता भजन करता, मैं पूरा दिन लगा हूँ व्यंजन बनाने में। तो विग्रह बोले कि हम आपके व्यंजन रोज रोज खा के परेशान है, आप इतना मेहनत मत करिए, क्योंकि क्या है ना वो कृपावश बोल रहे थे क्योंकि वो वीक हो चुके थे इतना, लेकिन फिर भी उनका जो प्रेम था ना वो उस चीज को सेवा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे कि सनातन गोस्वामी पाद इतने बूढ़े हो चुके थे लेकिन फिर भी वृंदावन से कहां जाते थे, गोवर्धन जाते थे पैदल, और गोवर्धन की परिक्रमा करते थे फिर मधुकरी करते थे फिर से वृंदावन आते थे। हाँ टोटल आज की दृष्टिकोण से देखा जाए तो टोटल लगभग वो डेली 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर चलते थे, डेली का रूटीन था उनका वो है ना। कितना प्रेम था गोवर्धन की परिक्रमा करके आते थे, कितना छोड़ नहीं रहे थे, भगवान को प्रकट होना पड़ा, प्रकट होके वो दिए गोवर्धन शिला प्रदान किए कि आप आग से मत आइए, इस शिला को दामोदर मंदिर में रखिए, रख के वहां पे वहां की परिक्रमा करिए, उस मंदिर की परिक्रमा करिए है ना। तो क्योंकि भगवान उस प्रेम को देख के ना निश्चित रूप से वो कृपा करते हैं कि आप इतना मेहनत मत करिए, आप वहां पे रहिए। तो इसी प्रकार से वो उनके जो इतने सारे व्यंजन बनाते थे इतना मेहनत करके वो तो, लेकिन इतना वीक हो चुके थे तो की गौर निताई इस प्रकार से बिहेव किए। जब इस प्रकार उनको प्रकट होकर बोलना पड़ा कि आप इतने सारे व्यंजनों को मत बनाइए, हम अभी स्वीकार करते हैं, लेकिन आप इतना इतना मत इतना मेहनत मत करिए हमको खिलाने के लिए। तो इस प्रकार से गौरीदास पंडित और उन विग्रहों के बीच में बहुत ही आदान प्रदान, बहुत बहुत ही दोनों आदान प्रदान करते थे। तो विशेष करके चैतन्य महाप्रभु का जो एक कृपा है गौरीदास पंडित के ऊपर विशेष कृपा था, और ये जो नित्य पार्षद के रूप में सुबल सगा के रूप में कृष्ण लीला में थे जो कि नित्य पार्षद है, तो हमको उनसे कृपा याचना करना चाहिए। विशेष करके अभी हमने क्या सुना उनके विषय में, थोड़ा जितना भी समय हो गया तो हमने जो भी सुना उसका स्मरण करते हुए हमको क्या इसमें शिक्षा मिला कि उनके जो प्रेम है उन विग्रहों के प्रति हमारा कैसा होना चाहिए, है ना। जगन्नाथ जी के प्रति, विग्रहों के प्रति, गौर निताई के प्रति हमको किस प्रकार से प्रेम होना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए और इनसे वही कृपा की याचना करना चाहिए कि जिस प्रकार से आपका प्रेम इन विग्रहों के प्रति है उसमें से एक रंच मात्र भी, लेश मात्र भी अगर कृपा के बिंदु हमारे ऊपर आ जाए तो हमारा जो जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार से हमसे उनकी कृपा याचना करना चाहिए इन भक्तों से। तो विशेष करके उनके दिन पर हम जब करते हैं तो निश्चित रूप से कृपा मिलता है, है ना। जो किसी के बर्थडे के दिन, अगर जन्म के दिन अगर हम उससे कुछ मांगते हैं तो वो खुश रहता है ना, उस दिन खुश रहता है तो कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है वो, है ना, उस दिन खुशी वाला दिन होता है। तो इसे ही उनके जो इवेंट्स, उनके तिथि पे हमको उनसे कृपा की याचना करना चाहिए, तभी जाके हम भक्ति मार्ग में प्रगति कर सकते हैं। हमको उत्साह बना रहेगा ना, उत्साह निश्चया धैर्य तत्व। आप लोग भक्ति साथी में कौन कौन है, कोई नहीं। हाँ, तो इस प्रकार के उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन आदि सारे चीजें ना बनी रहेगी, है ना। ये सारे चीजें बनी रहना चाहिए ना, हमें हमेशा उत्साह निश्चय धैर्य ये सारे चीजें ना भक्ति में प्रगति कराती है ना। तो ये सारे को बनाए रखना है तो हमको कृपा की बहुत जरूरत है। हम कृपा जब तक नहीं संचय करेंगे, कृपा की प्रार्थना नहीं करेंगे ना, तब तक हम धैर्यता उत्साह ये सारी चीजें बनाकर नहीं रख पाएंगे कंटिन्यूसली। तो हमसे उनसे प्रार्थना करना चाहिए उनसे। गौरीदास पंडित की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, शील प्रभुपाद की जय। तो अगली बार का होमवर्क क्या है, एक तो गीता का श्लोक है ना, और संडे को हो सके तो सब लोग आइए मंदिर, हम गुरु तत्व बलराम जी के विषय में हम चर्चा करेंगे संडे को जितना हो सकेगा। तो आएंगे सब लोग सुबह, छुट्टी है, कहाँ जा रहे हैं बाकी बाद में। अच्छा, और आप तो इधर ही है, आप आपका राखी तो बंद गया, आज ही बन गया ना मतलब। तो आपको लेके जाएंगे, ठीक है।